Dr. Girish Patel. He's a renowned psychologist from the Mumbai. He has traveled across more than 40 countries and delivered more than 5,000 lectures, TV shows, stage shows. He's also organizing secretary of Medical Wing Brahma Kumaris and also president of International Forum of Health Promotion Network, and he has passion of serving the humanity. He is busy, he keeps busy throughout the year by making the projects of holistic health as and workshops like Mind Power in medical profession and dealing with disability. So he will now teach us how to do the creative programming of mind to face day-to-day situations and to solve the problems. Scientifically as well as spiritually, very experienced. So give him a big hand again, Dr. Girish Patel. Thank you. Dhanyavad. Om Shanti.
National Conference on Mind-Body Medicine. इस कॉन्फ्रेंस में पधारे सभी डॉक्टर्स को नमस्कार. ओम शांति. 15 लोगों ने नमस्कार किया, 100 लोगों ने ओम शांति बोला. और सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, टीवी देख रहे हैं. देखो, टीवी देखते हैं ना तो रिस्पॉन्स नहीं दे सकते. अच्छा, हाँ, तो रिस्पॉन्स देना है मुझे. हाँ, मैं रोज 3-4 लेक्चर देता हूँ. हाँ, मुझे नींद में भी जगा सकते. आई विल स्टार्ट टॉकिंग. तो इसलिए आप जितना अच्छा मेरे अंदर में तो बहुत कुछ है. अब बाहर क्या निकलेगा ना, उसका आधार आपके ऊपर है. आप जैसी प्रतिक्रिया देंगे ऐसी चीजें बाहर निकलेंगी. हमने टॉपिक बहुत बड़ा है, क्रिएटिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड. हाँ, कम से कम 3 घंटे तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें बता सकता हूं. ध्यान से सुनना, मैं करूं ऐसे करना. अपना राइट हाथ उठाओ. देख, कुछ लोगों ने लेफ्ट उठाया. क्यों क्यों लेफ्ट उठाया? मैंने लेफ्ट उठाया. क्या बोला था? तो सुन नहीं रहे ना, तो और आगे. हाँ, अभी सुनो प्लीज. हाँ, अच्छा, अपना राइट हाथ उठाओ. हाँ, ऐसे ऐसे करो. अपनी दाढ़ी पे लगाओ. बहुत लोग नाक पे लगा रहे. क्यों क्यों नाक पे लगा रहे? क्योंकि मैंने लगाया. देखो, सिद्ध हो गया कि सुन नहीं रहे. तो देखना तो अच्छा ही है, परंतु सुनना भी है ना. बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत फायदे होते हैं, परंतु जितना अच्छा सुनेंगे ज्यादा फायदा होगा. हाँ, तो ध्यान से सुनो. कहा ना, मुझे प्रतिक्रिया भी दो. मेरी बात अच्छी लगे तो गर्दन हिलाओ, तो मैं भी समझूंगा कि सो नहीं गए. नहीं तो प्रोग्राम में लोग सो जाते हैं. एक बार एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, फ्रंट में एक लड़का सो गया. तो उसने बाजू वाले को कहा कि उसको जगा दो. तो उसने कहा, मैं क्यों जगाऊं, आपने उसको सुलाया. आप ही उसे जगाओ. तो ऐसा ना हो. हाँ, इसलिए क्या करना है मालूम है? मैं आपको कुछ बातें पूछूंगा, अभी सिंपल सी बातें. तो यस नो जोर से बोलने का. तो क्या होगा, जो सो गए ना जाग जाएंगे. या कम से कम माइंड तो यहां वहां चला जाता है. कहते हैं माइंड मर्क्यूरी जैसा है ना, उसको पकड़ना मुश्किल है. तो माइंड अगर यहां वहां चला गया और आप बोलेंगे यस नो, तो उनका ध्यान आएगा, हाँ अभी तो कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं बॉम्बे में नहीं हूं। अच्छा, और प्रतिक्रिया कैसे देनी है मालूम है? हंस के। हंसना आता है? आता है हंसना? सिद्ध करके बताओ। पच्चीस तीस परसेंट को ही हंसना आता है ना, कईयों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है ना, कितनी भी हंसने की बात कौन तो छोटी बात को बड़ी बना के हंसो। हंसने के लिए कोई कारण चाहिए ना, बिगर कारण के हंसेंगे तो मेरे क्लिनिक में भेज देंगे। ताली बजाना तो आता है ना, क्यों भी भूल गए। हंसना, ताली बजाना, यह तो स्कूल की पढ़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी करना है क्योंकि तभी आप इंजॉय करेंगे। परंतु यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है इन बातों को फील करना। डर लगे तो डरो, आंख में आंसू आ जाए तो भी अच्छा है। ठीक है, शुरू करें? दो चार लोग ही बोलते और तो बोले साहब हम चार बजे आ गए, बड़ी बात है। अच्छा देखो, शुरू करें उससे पहले जिनको ट्रांसलेशन की जरूरत है, तेलुगु में आपके पास एफएम होगा 89.5, कन्नड़ा में है 106 और इंग्लिश में 105। मोबाइल का हाँ ट्रांसलेटर अभी नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे, लेते आपके पास हो तो आप कर देना। सही कहते ट्रांसलेटर नहीं है, फिर भी थोड़ा तो हिंदी समझते हैं ना, हिंदी पिक्चर तो सब देखते हैं। ओके, हाँ मैं ओपनिंग बैट्समैन हूं तो ज्यादा मेरे को आपको रिस्पांस देना पड़ेगा, तभी मैं अच्छा खेलूंगा। ओके, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था अराउंड 1977, तब यह सिखाया गया कि हमारे ब्रेन में 50 केमिकल्स होते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। तो वी फेल्ट वाव, 50 केमिकल ये कर रहे। 1993 में एक रिसर्च हुई जिसमें बताया कि भी हमारे ब्रेन में 300 केमिकल्स हैं और आज अभी प्रूवन है कि हमारा दिमाग करीब 1000 केमिकल्स रिलीज करता है। मालूम है ना क्या केमिकल का लोचा है, लगे रहो मुन्ना भाई। सचमुच जो सारे जो केमिकल्स है वह आपके माइंड को रेगुलरेट करते हैं और उसका संतुलन बहुत जरूरी है। और एक जो नई बात कि जब फंक्शनल एमआरआई आ गया तो फंक्शनल एमआरआई से हम ब्रेन के सर्किट्स को भी स्टडी कर सकते हैं और काफी इस पर रिसर्च हुई है कि डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड्स में कौन से ब्रेन के सर्किट्स है वह एक्टिव होते हैं। तो अब अगर आप देखो कि जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, आप में से बहुतों ने शायद फंक्शनल एमआरआई देखी भी नहीं, उससे सचमुच हम यह बता सकते हैं कि आपके ये सर्किट्स है वह हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है। तो अब ये क्रिएटिव प्रोग्रामिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं ज्यादा थियरी में नहीं जाता हूं और एक छोटी सी बात बताता हूं फिर फटाफट मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, क्योंकि पिछले 40 वर्षों में मैंने यह समझा है कि थियोरेटिकल बातें शायद लोगों को अच्छी लगेगी कन्विंस करने के लिए, परंतु आवश्यकता है कि कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक आपको मिल जाए, है ना, हम सब डे इन एंड डे आउट फेस को, स्ट्रेस को फेस करते, एक छोटी सी बात डिस्टर्ब कर देती। अभी अभी मैं एक पेशेंट को देख के आया हूं, मैंने बहुत मना किया था कि यहां आना नहीं बिल्कुल क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स हैं, लोग थोड़ा दो दो मिनट तो मिलना चाहते हैं, तो भी लोग आ गए भी जैसे मैं आया कहा आप डॉक्टर है ना, कहा बस दो मिनट भी दे दो। मैंने उनको बताया कि आप 3 बजे आना, 4 बजे मेरा लेक्चर है, तो 3 बजे वहां हाजिर थे। तो साहब 1 महीने से नींद नहीं आई। जब पूछा तो कहते कोई टेंशन नहीं, सब कुछ अच्छा है, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है। फिर और ज्यादा प्रोब किया तो बस एक छोटी सी बात है कि मुझे कोई कुछ बोल देना तो बहुत फील हो जाता है। किसी ने मेरी टीका कर दी और कुछ मुझे बोल दिया तो मुझे बहुत फील हो जाता है। तो बस कहीं ना कहीं इसी से उसका ट्रिगर हुआ फर्स्ट डे। भी कैसे होता है कि भी फर्स्ट डे उसको नींद नहीं आई, फिर दूसरे दिन भी सोने से पहले सोच रही होगी कि कल भी नींद नहीं आई, आज भी नहीं आएगी, आज भी नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, तो नहीं आई। तीसरे दिन, अरे 2 दिन तो नहीं आई तो आज पक्का नहीं आने वाली। सो दिस इज नेगेटिव प्रोग्रामिंग। उसने नेगेटिव प्रोग्रामिंग किया, बेचारी कहते 1 सेकंड भी डॉक्टर मुझे नींद नहीं आती, आपने मना किया था फिर भी मैं इसलिए आई कि मुझे कुछ तो अभी दे दो ताकि मुझे नींद आ जाए, फिर चाहे तो मैं बॉम्बे भी आऊंगी आपके पास। तो ये छोटी सी बात में ये बातें शुरू हो सकती है। और हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन चाहते हैं, तो अगर आपको थोड़ा भी फिजिक्स का नॉलेज जिनको है तो आप पाएंगे कि आज अच्छे फिजिसिस्ट कहेंगे कि जो हमने स्कूल में न्यूटन्स लॉ सीखे हैं ना वो गलत है। बोले सच भी है परंतु गलत भी है। तो ऐसे ही हमने भी जो मेडिकल कॉलेजेस में सीखा है वो बल सच भी है परंतु गलत भी है। जैसे हमने यह सीखा है कि हमारे इमोशंस बॉडी ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करे, उसके लिए कुछ तो कनेक्शन चाहिए। नर्व्स का कनेक्शन होना चाहिए, सिंपैथेटिक या पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का कनेक्शन होना चाहिए, कुछ हॉर्मोन्स का कनेक्शन होना चाहिए, तब आपके थॉट्स है वो बॉडी को इफेक्ट करेंगे। परंतु आज यह बात सिद्ध है कि कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आपका मन बॉडी के कोई भी ऑर्गन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज यह भी प्रूवन फैक्ट है कि शरीर में जो 75 ट्रिलियन सेल्स है वह सभी सेल्स में अपने आप की चेतना है। जैसे अगर यहां पर 2000 लोग है तो आप सब इंडिविजुअल अलग अलग हो। अभी मैं एक ही बात बोल रहा हूं लेकिन आपके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट हो रही है क्योंकि आप डिफरेंट, एक इंडिविजुअलिटी। तो ऐसे ही शरीर के वो 75 ट्रिलियन सेल्स भी अपने आप में कॉन्शियस है और आपके थॉट्स उनको असर कर सकते हैं। और इस पर रिसर्च की जरूरत है। मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूं कि इस पर रिसर्च करो कि कौन सा इमोशंस क्या इफेक्ट करता है। जैसे जो बात अब तक सिद्ध है, जैसे कि भी जिनमें सिनिसिज्म है, कई लोग ना ऑलवेज क्रिटिकल होते हैं, तो हार्ट पर उनकी ज्यादा इफेक्ट होती है। जो परफेक्शनिस्ट है, टाइप ए पर्सनालिटी, सब उनको टाइम से चाहिए, तो उनके भी हार्ट पर ज्यादा इफेक्ट होती है। क्रोध से भी हार्ट पर इफेक्ट होती है, ब्रेन पे भी इफेक्ट होती है। जो ईर्ष्यालु है ना, उनको स्किन पर जल्दी इफेक्ट होती है। जो अपने इमोशंस को सप्रेस करते है ना, स्पेशली हाउसवाइफ, कि जिनको क्योंकि खुद नहीं कमाती है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनको कई बार चीजें चाहिए परंतु मिलती नहीं है, तो फीलिंग्स को सप्रेस करनी पड़ती, उनको थायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे कई चीजों पर रिसर्च हुई है, परंतु और शायद हमें डेप्थ में जाना चाहिए, स्पेसिफिक इस पर वर्क करना चाहिए। इसमें यह भी बात सत्य है कि जेनेटिकली हमारे कुछ ऑर्गन्स वीक है, कि मेरे फादर को डायबिटीज था तो शायद मेरा पैनक्रियास कहीं तो वीक है। तो जब स्ट्रेस होगा तो हो सकता है कि मेरे पैनक्रियास पर जल्दी असर हो, दूसरे के पैनक्रियास पर ना हो, तो एक पॉसिबिलिटीज है। परंतु स्ट्रेस डेफिनेटली इच मतलब योर एवरी थॉट इज इंपॉर्टेंट। आज हम घर के इंटीरियर को अच्छा बनने के पीछे बहुत मेहनत करते, कपड़े ठीक ठाक पहने इसके लिए बहुत मेहनत करते है ना, स्पेशल टाइम निकाल के भी ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, पर जो थॉट्स पर ध्यान नहीं देते कि सारे दिन में जो 30,000 से 60,000 विचार आते हैं है ना, वो थॉट्स पर हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अभी क्रिएटिव रीप्रोग्रामिंग में क्या करना है कि हमें ईच थॉट पर इंपॉर्टेंस देना है, और एकदम सरल सी बात है ना, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल टेक्निक्स है ना। आज ये भी यहां 3 दिन है ना, और कोई तो काम नहीं है ना, कहीं घूमने नहीं जाना प्लीज, आपके लिए स्पेशल डे है कि जब आप घूमने भी जा पाएंगे, ये 3 दिन हमको दे दो, मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं वी विल चेंज योर लाइफ। वेरी गुड, देखो एक मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, कमर सीधी रख के बैठो, हाँ क्लोज योर आईज, और दूसरा विचार कहां से आ रहा है देखो, शांति से देखो कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है, देखते रहिए कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है, जैसे ही आए तुरंत उसे पकड़ना है, देखते रहिए दूसरा विचार कहां से आ रहा है। हाँ आंखें खोलिए, हाँ आया दूसरा विचार, आया नहीं आया, अगर आप सचमुच उसको देख रहे थे डिटैच होकर के तो दूसरा विचार नहीं आया, नहीं तो इतनी देर में 4-5 विचार आ जाते। ये देखो पहली बेसिक टेक्निक है, सब कुछ अभी शुरू कर कि हमें अंदर में क्या चल रहा है उसको एक डिटैच भाव से देखना है। एक सिंपल और ये हो सकता है ऐसा सोचने का कि अगर घर में पंखा है ना, तो अगर पंखे को आंखें हो और हमको देख रहा हो तो ऐसे मैं डिटैच हूं और अंदर में क्या चल रहा है, क्या थॉट आ रहा है उसको देख रहा हूं, दो बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो आपके विचार कम हो जाएंगे, और दूसरा मैं आपको आज या कल बताऊंगा, कल भी मेरा एक लेक्चर है करीब करीब इसी समय पे, जरूर आना कि जिसमें और बताऊंगा कि कैसे हमें अंतर मन की गहराई में जाने, क्योंकि जो एक्चुअल रीप्रोग्रामिंग करना है ना वो सुपरफिशियल नहीं करना है, एक्चुअल प्रोग्रामिंग तो हमें डीप करना है, क्योंकि कॉज भी है ना बहुत ही डीप है, जो भी आपको बीमारी हो सब ओसीडी है। अभी मेरी प्रैक्टिस में तो मैंने ये देखा है कि भी डिप्रेशन से भी ज्यादा ओसीडी के पेशेंट है, अगर मैं रोज के 25 पेशेंट देखता हूं तो शायद 7 ओसीडी के हैं। तो ओसीडी के पीछे जो मैंने अनुभव किया है, जानते हैं ना ओसीडी की, बार बार हाथ धोते, लॉक चेक करते, पैसे चेक करते, बहुत वेराइटीज ऑफ ओसीडीज है, तो उसमें कारण यह देखा गया है कि कहीं ना कहीं असुरक्षा है, आप है ना सच नहीं मानेंगे, सब अच्छा लग रहा है हाँ या ना, नहीं मैं डीप में जा रहा हूँ, थोड़ा गहराई की बात कर रहा हूँ, इसलिए पूछा है ना, इट्स रियली लिटिल डीपर। अभी मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, उनका बहुत अच्छा कोलकाता में बिजनेस है ना, उनको ये ओसीडी है कि मुझे एड्स हो जाएगा, और शादी में 2-3 बार भी फोन करेंगे। आसपास में सुनने वाले लोगों को भी आश्चर्य होता है ना, मैं अधिकतर गाड़ी में ट्रैवल करते समय उसको सुनता हूं, तो ड्राइवर बोलता है सर ये कौन सा पेशेंट है, बार बार आपको एक ही बात पूछे जा रहा है। हाँ, अभी कोई इसका चश्मा रिपेयर करके आया तो बोलते उसमें तो उसका खून नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगेगा, आंख में तो नहीं चले जाएगा, एड्स तो नहीं होगा। और उसके पीछे का जड़ देखो आप, हाँ ध्यान से सुनना, शायद ने आपने से कई लोग एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे, बट इट्स अ फैक्ट। जब वो छोटा था शायद फादर भी गरीब थे, चाहते थे कि बच्चा कुछ ऐसा करे अच्छा करे, उसको IIT में एडमिशन नहीं मिला, तो फादर ने खूब खरी खोटी सुनाई उसे, तो अंदर में कहीं ये आ गया। ये तो बोलता ही है, कहते मैंने फादर को लेटर भी लिखा था, मैं घर छोड़ के चला गया, दूर 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 गया, और ये कि मैं मर जाऊंगा ना तो मेरे सभी के अंगों का दान कर देना, डोनेट कर देना, और तुम्हारे पैसे ले लेना, तुमको पैसे चाहिए ना, यू टेक दैट मनी, ऐसा कि मैं शरीर को खत्म करके भी तुमको पैसे दे दूंगा। तो कहीं अनकॉन्शियस में ये बात डीप 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 चली गई है, और आज भी उसको ये होता है मैं मर जाऊं तो अच्छा है, ये अनकॉन्शियस कंट्रोल करता है, हमें समझ में नहीं आता है ना, साइकोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है पता नहीं, अनलेस मैं डीप में जाऊं, एकदम रिलैक्स कर करके अच्छे से डीप में मेरे अनकॉन्शियस से क्या थॉट बाहर आ रहे हैं उसको मैं समझने की कोशिश करूं, तब तक पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कल भी थोड़ा और भी आपको बताऊंगा। कमिंग टू सिंपल थिंग, सबसे पहले तो यह कहेंगे कि हमें अपने थॉट्स को मैनेज करना, बहुत कुछ बोला गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, मेरी भी आप किताब एक पढ़ेंगे ना हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे कि पॉजिटिव कैसे सोचना है, परंतु हम सोच नहीं पाते हैं। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है कि कोई भी घटना हो उसमें छोटा सा भी कुछ पॉजिटिव फायदा होता है, वो शायद इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्टली उसमें नुकसान ही नुकसान है, परंतु इनडायरेक्टली कोई छोटा सा बेनिफिट हो सकता है। थोड़े दिन पहले ही GTV के चीफ है, उन्होंने मुझे एक छोटी सी कहानी भेजी, मुझे बहुत प्रेरणा मिली, आपको भी सुनाता हूं। कहते कि एक छोटा सा आश्रम था, उसमें एक साधक है, वह गाय डोनेशन में देके गया, शिष्य ने आकर के कहा कि सर ये साधक गाय डोनेट करके गया, तो उसने कहा बहुत अच्छा, अभी रोज दूध पीने को मिलेगा। फिर थोड़ी दिन के बाद फिर से शिष्य आया, कहा वो साधक गाय वापस लेके गया, तो बस उन्होंने क्या कहा, अच्छा हुआ अभी गोबर उठाना नहीं पड़ेगा। समझे नहीं समझे, गर्दन तो हिलाओ, ताली नहीं बजाएंगे तो चलेगा, गर्दन भी हिलाएंगे तो मैं समझूंगा कि भी समझ रहे, हाँ समझ गए, हाँ टाइम नहीं अपने पास, क्या समझना है कि इनडायरेक्ट भी बेनिफिट्स होते हैं ना, कुछ बेनिफिट्स डायरेक्ट नहीं होते हैं, वह इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को भी ढूंढो, और सबसे तो अच्छा यहां वहां नहीं देखो, वो लोग अपना मैनेज करेंगे, अगर बेनिफिट लेना है कॉन्फ्रेंस से तो जो स्पीकर बोल, हो सकता है मैं बोल रहा हूं यूजलेस है आपके लिए, परंतु नेक्स्ट चीज कैन बी इंपॉर्टेंट, नहीं नहीं वह है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग मे नॉट बी इंपॉर्टेंट, लेकिन 10 सेकंड के बाद कहूंगा वो शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो है ना, स्टेज पे कुछ भी एक्टिविटी हो ना, यू बी फोकस्ड। जब ब्रह्मा बाबा थे यहां से आप भी माउंट आबू जाएंगे ना तो देखेंगे बहुतों को उल्टियां होती है क्योंकि सारी पहाड़ी है। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बच्चे सामने देखो, इधर उधर नहीं देखो तो उल्टी नहीं होगी। आई थॉट वंडरफुल है, तो जीवन का मैसेज है कि सामने देखो, इधर उधर नहीं देखो, राइट? ओके। तो बात क्या थी कि रीप्रोग्रामिंग कैन स्टार्ट इन दिस सिंपल वे, है ना। बहुत कुछ घटित हो सकता है। आप जैसे यहां पर भी आए, इतने 3000 लोग आए, मैं मानता हूं कईयों को ठीक से रहने को नहीं मिला, है ना। जिंदगी में कभी भी एक रूम में 2-3 लोग नहीं रहे, आज शायद 10 लोग रहते होंगे, है? तो ये सोचो कि भाई ये तो एक तो आश्रम है, यहां तो हमको 3 दिन ही रहना है, और ये सोचो कि भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी ऐसी नौबत आई, कभी समझे एक रूम में 7 लोग रह रहे, तो यहां मैं 3 दिन रहा तो फिर मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ना कई बार नीचे सोना हो ना, मेरे लिए बहुत इजी है। लोग कहते हैं कि भाई नीचे सोना आपके लिए इजी है, मगर तो 35 साल तक तो नीचे ही सोए, है ना। 35 साल के बाद ही घर में बेड आया था, 35 साल तक तो नीचे ही सोए है, है ना। तो अभी नीचे सोने में क्या प्रॉब्लम है? तो हर बात में क्या बात क्या थी, पॉजिटिव को ढूंढो और उसको बार 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 रिपीट करो। पॉजिटिव थिंकिंग का दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि शायद वर्तमान में आपको कोई फायदा दिखाई नहीं देता है। जब वो घटना होती है, सपोज आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, आपके आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो गया या समथिंग एल्स, नो यू गॉट डिफेम्ड, आपको जेल हो गई हो, तो आप शायद बोलेंगे कि इसमें कोई फायदा नहीं है, हैं, तो नुकसान ही नुकसान है इस कंडीशन के अंदर। परंतु तब भी यह एक बात है ना, दिस क्रिएटिव रिप्रोग्रामिंग स्टार्ट्स विद बिलीफ सिस्टम्स। फर्स्ट इज थॉट्स, सेकंड इज बिलीफ सिस्टम। तो यह बिलीफ सिस्टम बना लो कि वर्तमान में शायद कोई फायदा नहीं दिखाई देता है, परंतु भविष्य में कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। जिन्होंने मुझे सुना है शायद ये उदाहरण सुना होगा, फिर से रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, हाँ, लाइव एग्जाम्पल। जब मैं 19 साल का था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तभी मेरे आधे बाल जड़ गए। अगर 19 साल का लड़का आधा गंजा हो तो लोग क्या क्या बोलेंगे, है ना। सब मैंने सहन किया है, परंतु जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की तब मैं 35 साल का था। मित्रों ने कहा था कि देखना कुछ समय कोई ज्यादा पेशेंट तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हाँ। मैं भी ऑलमोस्ट मेंटली तैयार था, लेकिन एक सप्ताह में अच्छे खासे पेशेंट आने लगे। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने सारे पेशेंट कहां से आ रहे हैं, है ना। एक दिन इसका रहस्य पता चला, एक कंपनी सेक्रेटरी मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर लगता है आप हमारे एरिया में सबसे सीनियर साइकेट्रिस्ट है। कभी मैं जूनियर डॉक्टर के पास नहीं जाता। मुझे तो इस बात को समझने में कि टकलू बनने से क्या फायदा होता है 16 साल लगे। देखो अभी भी कई लोग हंसते नहीं, बोला ना कईयों को हंसाना बहुत मुश्किल, अपने पे हंसा रहो भैया, हंसो ना। एक्चुअली तो सचमुच भी आपको कोई, मैं सच करता हूं, और इट हेल्प, है ना। कई बार हमारे लोग मजाक उड़ाते तो जोर से हंसता, तो फिर वो व्यक्ति मजाक उड़ाना ही बंद कर देता है कि भाई इसको इफेक्ट नहीं हो रही है। तो बात क्या है, बस ये पक्का कर लो, हर दिए तले अंधियारा होता है, हर अंधियारी रात के बाद उजाला होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। समझ गया कि भी मुसीबत आई तो अभी सुख आने वाला है, पक्का कर लो। जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा सुख। अगर मुसीबत छोटी तो सुख भी छोटा। तो दिस इज योर लिटिल बिट ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग। हाँ, कल भी बताऊंगा, कल भी सब 4 बजे हाजिर रहना। अच्छा लग रहा है ना? और अच्छा आप समझेंगे। यानी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि वी वॉन्ट टू डिस्कस क्रिएटिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। तो सेकेंड स्टेप है, वह है विजुअलाइजेशन। क्योंकि जब आप सोचते हो ना, तो पिक्चर भी क्रिएट करते हो। और जो हमारी बुद्धि है, वह चित्रों की भाषा समझती है। और इसलिए इंपॉर्टेंट से भी, प्रैक्टिकल बात पे भी, जब भी आपको पॉजिटिव सोचना है, क्रिएटिव प्रोग्रामिंग करनी है, तो नॉट शब्द का यूज नहीं करो। जब आप नॉट बोलते ना, जैसे आप बच्चे को बोलते कि भी, एक महिला मेरे पास आई, कहा कि सर आजकल जैसे यूथ का प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा मेरा बेटा कॉलेज से आता है, बूट निकालता है, धड़ाम करके फेंकता है। मैं उसको 4 साल से बोल रही हूं, वो बढ़ता ही जाता है, ये प्रॉब्लम कम नहीं होता है। तो मैंने पूछा, बहन आप क्या करती हो? जब बच्चा आता है क्या करती हो? तो उसने कहा कि जब बच्चा आता है ना, तो मैं तो अपने किचन में होती हूं, और ये तो सिग्नल है, धड़ाम होगा ना तो मालूम पड़ता है, क्योंकि उसके पास चाबी होती है, वो खोलता है, तो दरवाजा खुलता है वो मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, तो मैंने कहा आप क्या करते? फिर मैं वहां से चिल्लाती, बेटा ऐसे नहीं करने का, तुम सुनते नहीं हो, 10 साल से बोल रही हूं। तो वो ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि वो नो है, अभी वो नेगेटिव है कि धड़ाम नहीं करने का। उसका ब्रेन परसीव, माइंड परसीव नहीं कर सकते क्या? मैंने बोला देखो, एक सिंपल बहन काम करना, कल से आपको तो पता है कब बेटा आता है ना, आप वहां पर रूम में आके बैठ जाना। जैसे ही वो आए, उसको बोलना देखो बेटे, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, तुम कितने होशियार हो, इतने अच्छे मार्क्स लाते हो। देखो बेटे, बूट को है ना ऐसे खोल के यहां रखो ना, तो मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला तुम एटलीस्ट उसको है ना 2 वीक्स तक करना, फिर 3 महीने के बाद मुझे कोई प्रोग्राम में मिले। उसने कहा डॉक्टर साहब जादू हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा 2 दिन पहले हमारे घर में मेहमान आए थे, जैसे शूज निकाल के रख रहे थे, तो उसने कहा रुको, बूट को यहां रखने का। तो बात यहां क्या है, एक तो कैसे करना है, हाउ टू मैनेज चिल्ड्रन, हाँ पेरेंटिंग भी सीख रहे हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कि कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, जैसे बोलो धड़ाम करके दरवाजा बंद नहीं करो ना, ये बताओ कि भाई स्लोली दरवाजा बंद करो। तो ऑलवेज नेगेटिव चीज को हमारा माइंड पकड़ नहीं पाता है। और जब आपको रीप्रोग्रामिंग करना है और पिक्चर क्रिएट कर रहे हो, तो विचित्र पिक्चर क्रिएट करो। क्योंकि ना विचित्र चीज हमको जल्दी याद रहती है। हमारी एक पूरी सीरीज चली है, शिवानी बेन के साथ इंटरव्यूज है, लाइफ स्किल, जिसमें हमने ये चर्चा की है कि कैसे पिक्चर क्रिएट करके आप बीमारियों को भी ठीक कर सकते, है ना। जब मैंने सब बोला ना, मुझे इतना विश्वास नहीं था, परंतु कई बार लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ट्रेन में मिलते, कहते डॉक्टर साहब आपका वो मैंने पढ़ा था ना, मेरा थायराइड ठीक किया, मैंने वो पढ़ा था, मैंने अपना ब्लड प्रेशर ठीक किया। मुझे आश्चर्य होता है, सचमुच इस पे रिसर्च होनी चाहिए। हाँ, आपको भी इंटरेस्ट है तो मुझे बोलना, मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल बना के दूंगा। और इस पर काफी इवेंट्स तो है ही है, शायद आप में से कुछ लोग हंसेंगे। 2 उदाहरण देता हूं। चलो मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूं पहले। क्योंकि टाइम भी कम है। आज से करीब 25 साल पहले मुझे गोवा यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस बनाने के लिए कहा गया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप एक सिलेबस बनाइए, और हमने सोचा कि भी वहां के प्रोफेसर्स को हम ट्रेनिंग दे देते, है ना, प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दे देंगे तो फिर वो आगे चलाते रहेंगे, हम तो नहीं जा सकते बार बार। तो जब वहां गए तो 5-6 घंटे खड़े होकर लेक्चर्स देने होते थे। तो मैंने पहली बार नोट किया कि घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ऑब्वियसली बॉम्बे आके मेरे फ्रेंड को मैंने कहा, तो उसने कहा गिरीश ये अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ये आगे बढ़ना ही है। हाँ, यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट। कुछ कुछ उसने बताया कि एक्सरसाइज करो, ऐसा वेट कम करो, अदरवाइज इट्स गोइंग टू प्रोग्रेस। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इतने लेक्चर्स देता हूं, अब ये समय है कि अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने का। तो मैंने सचमुच किया, दिन में 3-4 बार इमोशनली मतलब मेडिटेटिव स्टेट में जाता था और अंत में बोलता था कि भगवान आप तो सर्वशक्तिमान है ना, है ना, मैं तो आपका काम कर रहा हूं, आप तो सर्वशक्तिमान है, आप मेरे घुटनों को 3 सेकंड भी, है ना, करंट दे दो तो कार्टिलेज बड़ा हो गया, ना, यू कैन डू इट। फिर मैंने ये भी सोचा कि भी हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो रिटर्न में भी कुछ देना चाहिए। तो मैंने कहा कि भी भगवान जी आप 3 सेकंड मेरे घुटनों को करंट देना, मैं रोज 3 मिनट आपके पैर दबा के दूंगा। तो अंदर से आवाज आई कि मेरे तो पैर ही नहीं है। तो फिर एक जैसे नहीं डायलॉग चला, कॉन्वर्सेशन चला परमात्मा के साथ। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो सामने से जवाब आया कि रोज 5 लोगों को भगवान के बारे में बताना। मैंने कहा प्रॉमिस 50 लोगों को बताऊंगा, तुम इसको ठीक कर दो। सच मानो मैंने 2-3 महीना किया होगा, आज मैं 8-8 घंटे खड़े होके कॉरपोरेट सेशंस लेता हूं, दर्द नहीं होता। और उसके लिए बहुत अच्छा सा एक प्रमाण मिल गया। आज से करीब 2 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट को बढ़ाना था, क्योंकि आजकल तो इवन एज अ डॉक्टर अगर आप कोई बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो बिल देगा 15 लाख रुपया। तो जब मैंने कंपनी को कहा तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी एज 55 से ज्यादा हो गई है, तो फिर से सब टेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसमें नी का एक्सरे भी था, मैंने सोचा अभी तो पकड़े गए, परंतु जब एक्सरे आया एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हो 2 एक्सरे को कंपेयर करे तो वी डेफिनेटली से कि थोड़ा तो रिवर्सल हुआ है, ऑल्दो आई डिड एवरीथिंग। भी क्या काम किया पक्का नहीं भी शायद बोल सकते हैं कि भी मैंने वेट भी कम किया, एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रहा हूं, बट आई एम श्योर कि दैट इज वर्थ, क्योंकि जो 25 साल पहले वेट था उससे तो मेरा बढ़ गया, जिससे धीरे धीरे बढ़ता है ना, एक्सरसाइज भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एज अ डॉक्टर शायद आप ये भी कहो कि सर इसके लिए एविडेंस नहीं है, वो हमको इकट्ठे करने पड़ेंगे, कुछ तो है ही। साइमन टाउन हैज रिटन होल बुक गेटिंग वेल अगेन, है ना, काफी है। और वो डुप्लीकेट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो लोग उसको करने जाते हैं वो इतना अच्छे से समझा नहीं पाते। इसलिए हम लोग भी साइकोथेरेपी, जब मुझे फोन आता है ना, लोग कहते हैं कि भाई मैं तो दिल्ली में हूं, दिल्ली में कोई साइकोथेरेपिस्ट का नंबर दे दो, मैं उनको कहता हूं कि देखो जहां तक मेडिसिन का सवाल है, साइकोफार्मेकोलॉजी का सवाल है, आप 2 अलग साइकेट्रिस्ट के पास गए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु साइकोथेरेपी में आसमान जमीन का फर्क है। कि एक तो वो टेक्निक डिफरेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कितना दिल से वो आपको सिखा रहा है। जो थेरापिस्ट आपको करा रहा है उसके अंदर में वो कितना अच्छे से आपको कन्विंस कर पा रहा है ना, उसकी एनर्जी भी आपको क्या मिलती है ना, वह सब पर डिपेंड करता है। तो मेरी तो बस एक छोटी सी राय है आप सबको कि जरूर इस पर और थोड़ा सा पढ़ो कि इवन इफ यू आर अ फैमिली फिजिशियन, आपके पास जो पेशेंट आते हैं उसमें से मिनिमम 30% हैव सम स्ट्रेस, उससे ज्यादा ही होंगे। और अभी उन 30% को हो सके तो वहीं कुछ बताना है। अगर आप बिजी है तो कोई नर्स को सिखा दो, कोई पैरामेडिकल इसे काउंसिलर भी रखो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो यू कैन कीप अ काउंसिलर विद यू। और वह भी ये जो पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग है, विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है वो सिखा रहे, आपको इंटरेस्ट है, मैं भी ऐसे कोर्स शुरू करने वाला, तो आप उसको अटेंड करिए, किसको भेजिए सपोज आपके कोई स्टाफ को, एंड वी विल टीच देम एवरीथिंग। ये लक्ष्य है, पैसा नहीं कमाना है, हम बाद में कुछ अच्छी चीज को छोड़ के जाए। तो विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है ना, और वह कुछ भी फनी हो सकता है। नहीं नहीं, कॉमन एग्जाम्पल आपने भी सुना होगा, कार्लोन सैमोंटन के पास एक लड़का आया, उसको ब्रेन का ट्यूमर था ना, और उन्होंने अपनी वाइफ से सुना था, उनकी वाइफ साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने सुना था कि ये माइंड काम करता है, तो और सब भी किया लेकिन सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते, बच्चे को कुछ सिखाते। तो बच्चे को बताया कि बेटे तुम वीडियो गेम खेलते हो? उसका हाँ डॉक्टर मैं खेलता हूं। उसने कहा अभी ना दिन में 3 बार वीडियो गेम खेलना, और ये सोचना कि देखो, उसको बताया ब्रेन का पिक्चर ड्रॉ करके बताया कि देखो यहां पर तुमको ट्यूमर है ना, इतना ट्यूमर है, तुम वीडियो गेम खेलना और ये सोचना कि कैंसर के सेल्स को मैं मार रहा हूं। बच्चे को तो मजा आ गया, वो 30 बार खेलने लगा कि मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं, कैंसर के सेल्स को मार रहा हूं, मेरे कैंसर के सेल्स मर रहे हैं, मेरा वो ट्यूमर 1 इंच का था कम 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 हो रहा है। 2 महीने के बाद उसने जाके अपनी मां को कहा, मॉम आई थिंक माई ट्यूमर हैज डिसअपियर। उन्होंने जाके MRI की तो ट्यूमर गायब। पर सबको नहीं होता है। अब इसका जो नेगेटिव पार्ट यह भी है कि पेशेंट एक को तो ऑपरेशन नहीं करना, यही करो है ना, कीमोथेरेपी नहीं लेनी, यही करो है ना, उनको ये बताओ कि दिस इज ऑल्सो फैक्टर विच हैज टू बी कंबाइंड विथ कन्वेंशनल थेरेपी। जो प्रूवन कन्वेंशनल थेरेपी है उसमें आप डरो नहीं, परंतु वह अल्टीमेट तो आंसर है ही नहीं, तो डू दिस ऑल्सो है ना, तो इट विल एड टू इट। और कहीं कोई रुक सकता है तो भले रुके भी थोड़ा, और दोनों चीजें साथ में करे ना। सो दिस इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। और जो रिप्रोग्रामिंग जब हम बोलते हैं तो उसमें इससे भी ज्यादा जो रोल है वह रोल है बिलीफ सिस्टम का। बहुत सारी स्टडीज है कि जो भी आप मेडिसिन देते हो उसमें एटलीस्ट 30% इज अ प्लेसिबो इफेक्ट। अभी अभी एक मुसलमान महिला मेरे पास आई, इट्स रियल ट्रूथ था, क्योंकि ये पेशेंट जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना, एक्चुअली शी हैड सिज़ोफ्रेनिया बट शी वुड नेवर एक्सेप्ट। उसको ये भास होता था कि मैं टॉयलेट में जाती हूं, वॉशरूम में तो बास आती है और बाजू वाले चिल्लाते, मुझे गालियां देते, लेकिन उसके लिए तो सत्य था, उसके लिए वो कोई गॉड ऑल्सो कैन नॉट कन्विंस हर। उनका अपना बड़ा सा फ्लैट था, वो छोड़ के भाड़े पे रहने गए, लेकिन वहां भी वही चालू हो गया। तो इट वॉज रियली, मेरे पहले भी 3-4 साइकेट्रिस्ट के पास गए थे है ना, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। मुझे कहा, डॉक्टर मेरे को आप पे बहुत विश्वास है, ट्रिमेंडस फेथ, वो तो यहां तक बोलती है कि अमिताभ बच्चन और आप दो खड़े और बोलो एक को मिलना है तो मैं आपको मिलूंगी। मैं नॉट सो फेमस, द ओनली पॉइंट हियर इज आई एम ऑर्डिनरी पर्सन। बात मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि फेथ फैक्टर एंड बिलीव मी, अभी आपको कहीं पता रेस्पेरिडॉन इज द मेडिसिन, मेरे आगे भी रेस्पेरिडॉन ही दिया गया था। मैंने भी सोचा यह सही मेडिसिन है, नहीं कंपनी का नाम बदल गया है ना, पेशेंट के लिए नई दवा थी लेकिन वो रेस्पेरिडॉन ही था, है ना। 10 दिन के बाद आती है, डॉक्टर मे एकदम अच्छी हो गई, वंडरफुल, यू आर सो ग्रेट, आई एम रियली क्योर्ड। पॉइंट हियर इज अ फेथ फैक्टर। तो अब भी फेथ के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, सब पर ध्यान देना है। जैसे आपका ड्रेस, इंटीरियर ऑफ योर क्लिनिक, हाउ यू टॉक टू पीपल, ना, और एक छोटी सी बात कि कभी भी कितना भी पेशेंट बहुत फालतू प्रश्न पूछते हैं लेकिन फॉर गॉड्स सेक, है ना, कभी भी पेशेंट पे गुस्सा नहीं करो। एवरी पेशेंट इज इम्पेशेंट एंड डॉक्टर शुड नॉट लूज दिस पेशेंट विथ पेशेंट। कुछ भी हो जाए, कितना भी फालतू कुछ नहीं, और चलो थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। हाँ मे बी, चल वेरी गुड, रादर देन टॉकिंग ना, इसके बाद सेशन है पूरा। हाँ अच्छा, कमर को सीधी रख करके बैठो, आई विल ऑल्सो सिट डाउन। हाँ मैं नहीं दिखता हूं तो चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ ओके, हाँ बस कमर को सीधी रखो, हाथ को ऐसे मोड़ लो, हाँ कंधे को भी ढीला कर दो, आंखें बंद कर सकते हैं। ऐसे राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, आप में से कहीं पहली बार कर रहे होंगे, आंखें बंद कर देंगे। बस अपनी सांस की गति को ही देखिए, सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आ रहा है। जैसे ही सांस की गति को फील करते कि कितना गहरा है, लाइट है तो लाइट है, जैसा है वैसा है, बस इसे फील करो तो विचारों की गति भी शांत हो जाए। अब आप मन को मोड़ सकते हैं, ये चित्र निर्माण करिए कि बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें एक गर्म हवा के गुब्बारे में आप बैठे हैं। ये गुब्बारा आपको सुरक्षित ऊपर ले जाएगा। ये पीले रंग का गुब्बारा है जो आपको सुरक्षित ऊपर ले जा रहा है, 5 फीट 10 फीट ऊपर जा रहे हो। और ऊपर जाते हो तो नीचे के लोग छोटे दिखाई देते, आसपास में ग्रीन पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही जब हम मन की स्थिति को ऊपर उठा लेते हैं तो परिस्थितियां छोटी दिखाई देती है। इसके लिए सोचिए कि मैं व्यक्ति नहीं शक्ति हूं, मैं एक दिव्य चेतना हूं, मस्तिष्क के मध्य में दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करें। जैसे भाव निर्माण होता है हल्कापन लगता है, शांति का और ये बलून ऊपर जा रहा है, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा आनंद से भरपूर हूं और ऊपर जा रहा है। बादलों में पहुंच गए, देखो नीचे से प्लेन जा रहे हैं, प्लेन के ऊपर आप बलून में आनंद से जा रहे हो और ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के उस पार चले गए, एकदम वेटलेस। आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, आसपास में सितारे ही सितारे हैं, इन सितारों के मध्य से आप और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। बहुत अच्छा, आप देखते हैं कि दूर से बहुत ही जगमगता सितारा नजदीक आ रहा है। ये एक दिव्य सितारा है कि जिससे आपको सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही है। वह सितारे से ऐसे वाइब्रेशन मिलते हैं कि आप एकदम खुशी का अनुभव करते हैं, वह सितारे से ऐसे वाइब्रेशन मिलते हैं कि आपका विल पावर बहुत बहुत बढ़ गया है, आप में सर्व शक्तियां समा रही है। ऐसे दम भरपूरता का अनुभव कर अब आप वापस नीचे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी नीचे आते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं, फिर भी एकदम हल्के एकदम लाइट है, और जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको पेड़ दिखाई देते, घर दिखाई देते, फिर भी एकदम आप न्यारे हो, एकदम डिटैच शांत हो, एकदम पृथ्वी पर आ गए हो। धीरे से आंखें खोलिए, इसी स्थिति को सदा के लिए कायम रखेंगे। इतना ही हल्कापन, इतनी ही शांति सारा दिन कायम रहेगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कैसा लगा? जी जी, हाँ मैंने टाइम से पूरा किया, बोल रहे टाइम पूरा हो गया, मैंने कहा मेरा भी पूरा हो गया। तो देखो कल सवेरे भी मेरा एक सेशन है, अच्छा लगा ना? तो कल पूरा हमने एक्सरसाइज का प्रोग्राम डेवलप किया है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक योग। इट्स अ वंडरफुल थिंग, आप देखना, आप इंजॉय भी करेंगे। इट्स अ फुल एक्सरसाइज प्रोग्राम जो सवेरे जल्दी आप प्रोग्राम में देखना, इवनिंग में भी एक सेशन है तो जरूर आना। इन पंक्तियों से पूरा करता हूं। यात्रा में होती है शिकायत मुसाफिर को, होती है ना? इसीलिए तो रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है, परंतु कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां न टिकट न स्टेशन होता है। ओम शांति।